लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि, आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां है आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान। होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला, आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि।
ओम शांति। अभी हम सभी योगेश्वर शिव बाबा के प्रखर योगी राज ऋषि आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी से मिल रहे हैं। भक्ति के इस सत्र में भ्राता जी का हम सब बहुत बहुत दिल से, स्नेह से, हृदय से बार बार स्वागत करते हैं। ब्रह्मा बाप की ये सबसे बड़ी अलौकिक अद्भुत विशेषता है कि फरिश्ते रूप बाप ने अपने जैसे अनेकों फरिश्ते तैयार किए। आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी अपनी युवा अवस्था में MSc की डिग्री गोल्ड मेडल से जीतकर बाबा के यज्ञ में आए। विशेष हमारी दादी दीदी ने तीसरे नेत्र से आपको परखा और आपकी लगन और तीव्र पुरुषार्थ की विशेषता से आप मधुबन निवासी बन गए। और आदि से लेकर आज तक दादियों के वफादार राइट हैंड कुमार के रूप में आप पांडव सेना की शोभा बढ़ा रहे हैं। सदा सच्ची दिल योग के प्रयोग की, योग के तीव्र पुरुषार्थ की लगन, योग का चार्ट बढ़ाने की लगन, जिसने आपको माला में बहुत आगे नंबर पर ला दिया। अनुभव होता है पांडवों में जो श्रेष्ठ पांडव है, और सबसे बड़ी बात जो सदा से तीव्र पुरुषार्थी है, आदि से लेके आज तक भी जो सदा तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। विशेष भाई साहब को अव्यक्त ब्रह्मा की बेहद पालना मिली है। कुछ दिन पूर्व आपसे बड़े सुंदर अनुभव हमने सुने, जिसका बहुत दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा कि साकार तो साकार, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा ने भी कैसे एक एक आत्मा को अपनी अलौकिक आध्यात्मिक पालना से सशक्त बनाया। तो भाई साहब अव्यक्त पालना के अद्भुत अनुभवों से सदा आगे बढ़े हैं और वर्तमान समय बेहद यज्ञ के सभी स्थानों में जो टोली विभाग है, देखो ब्राह्मण बच्चों को बाबा, मुरली, मधुबन और फिर क्या प्रिय लगता है सबसे ज्यादा, बाबा के यज्ञ की टोली, कड़ा दाना भी मिले तो दिल प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुशी होती है, यज्ञ का भोग। तो भाई साहब अभी भी विशेष बाबा के सभी स्थानों का जो टोली डिपार्टमेंट है उसका मुख्य सेवा कहे निमित्त भाव से सारी जिम्मेवारी आप पर है, लेकिन इसमें भी विशेषता है कि आपने अपने जैसे अनेक जिम्मेवार तैयार किए और अब आप बेहद विश्व की सेवा पर रहते हैं। अपने योग के अनुभव और प्रयोगों से सारे विश्व के ब्राह्मण परिवार की पालना करते हैं। कुछ रूढ़िहान चल रही थी, भाई साहब बोले कि 88 देश विश्व के जहां ब्राह्मणों की तपस्या भट्टियां और रिट्रीट के लिए भाई साहब ने विशेष यात्राएं की है। वैसे बहुत अनुभवी रतन, दीदियों दादियों के बहुत समीप रतन, अव्यक्त पालना का एग्जाम्पल आदरणीय आत्म प्रकाश भाई का फिर एक बार हम सब बहुत बहुत स्नेह से स्वागत करते हैं। भट्टी में एक महारथी एक ही बार मिलते हैं, इसलिए दिल में आता उनकी थोड़ी सी विशेषता एक मिनट में हमको पता चले। तो भाई साहब हमें ज्वालामुखी योग भट्टी कैसे करे, भट्टी तो हम सब कर ही रहे हैं लेकिन हमारा योग ज्वाला रूप वाला हो, इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी।
ओम शांति। हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहां स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए चार सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट है कौन सा, योग का। हम सभी की रेस योगाभ्यास में है। योगी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स होंगे, टॉपर्स होंगे, चैंपियंस होंगे। क्योंकि जितना ज्ञान हमारे बुद्धि में बैठता है उतना योगाभ्यास आगे बढ़ता जाता है। जितनी दिव्य गुणों की धारणा हम करते जाते हैं योगाभ्यास सरल होता जाता है। और जितनी हम सेवा करते हैं तन से, धन से, मन से, मनसा वाचा कर्मणा से, अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं और वो दुआएं हमारे योगाभ्यास को और आगे बढ़ाती हैं। तो योगाभ्यास में मुझे मास्टरी लेनी है, ये हमारा लक्ष्य हो। हम हर रोज ज्ञान और योग का अभ्यास सवेरे करते हैं, हर रोज करते हैं, लेकिन देखा जाता है हर रोज योगाभ्यास करने के बाद भी हमारे संस्कारों में परिवर्तन जितना चाहिए उतना नहीं दिखाई देता है। कभी न कभी कोई न कोई त्रुटि या विकार का अंश हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। तो बाबा ने इशारा दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। ज्वाला स्वरूप योग का नाम ज्वाला स्वरूप क्यों है? जब धरती से ज्वालामुखी फटती है तो उसमें जो लावा रस निकलता है उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, इतना ज्यादा होता है, उसके संपर्क में कितनी भी कठिन से कठिन चीज आती है सेकंड में पिघल जाती है। चाहे लोहा हो चाहे पत्थर हो सेकंड में पिघल जाती है। ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास में जो योग की अग्नि प्रज्वलित होती है वो बहुत प्रखर होती है, ज्वाला के रूप में वो अनुभव होती है। और उस ज्वाला में हमारे 63 जन्मों के जो कड़े संस्कार हैं, कठोर संस्कार हैं, विकारों के अंश वंश हैं, वो सारे जड़ से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस योग का नाम ज्वाला स्वरूप योग पड़ा है। तो इतनी उच्च कोटि की योग की साधना करने के लिए हमें खुद को कैसे तैयार करना है? तैयारी करने के लिए विशेष पहली बात पर हमें ध्यान देना है, देखते हुए भी न देखने का अभ्यास बढ़ाना है। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है, सिद्ध किया है, 70% इन्फॉर्मेशन आत्मा में नेत्र मार्ग से जमा होती है। जो चीजें हम देखते हैं वो सारे दर्श जो हैं आत्मा में जमा होते हैं नेत्र मार्ग के द्वारा। और जब हम एकांत में बैठते हैं वो देखे हुए दर्श हमारे मानस पटल पर रिपीट होते रहते हैं, जिससे एकाग्रता का अभ्यास कठिन लगता है। इसलिए विशेष इंटरेस्ट से कोई भी बात हमें नहीं देखना है। भले आंखें हमारी खुली हैं, जो दर्श सामने आ रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन तीसरा नेत्र हमारा बाबा पर एकाग्र है। तो देखते भी न देखने का अभ्यास बहुत सरल हो जाता है। तैयारी के लिए दूसरी बात है, ऐसे उच्च कोटि की योग की साधना करने के लिए अंदर में बहुत लगन हो। क्योंकि जितनी लगन की अग्नि होती है उतनी योग की अग्नि प्रज्वलित होती है। कुछ भी हो मुझे ऐसी साधना करनी ही है, उसके लिए दिल में सदा लगन हो, तड़फन हो, बेताबी हो। जैसे मीरा को कृष्ण के पीछे लगन थी, वैसे हमें बाबा के पीछे लगन लगी रहे। ठीक है, इस तरह से तैयारी करने के बाद हमें पांच बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति के लिए पांच बातों पर दिल से हमें अभ्यास करना जरूरी है। उसमें पहली बात है सारे दिन भर हमें समानधारी होकर रहने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा सोमान के सिंहासन पर विराजमान हूं, उससे हमें ईश्वरीय नशे की, ईश्वरीय मस्ती की, ईश्वरीय खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जब ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, जिससे योगाभ्यास में बहुत गहन अनुभव स्वतः ही होते रहते हैं। दूसरी बात, जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम अनुभव करते हैं, अपने अलौकिक दुनिया में स्वयं को अनुभव करते हैं। क्योंकि ईश्वरीय नशे की अनुभूति से मन बुद्धि बहुत हल्की फुल्की रहती है, खुशी में उड़ने लगती है और ऊपर की ओर हमें ले जाती है, जिससे बाबा की याद बहुत सहज होती है। तो ईश्वरीय नशे में झूमते रहे। इसके लिए सारे दिन भर में सोमान का अभ्यास का अनुभव बढ़ाते चलें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई अनबन हो जाती है, कोई बात हमें खटकती है, कोई ऐसे सीन सामने आती है, तो हम सोमान के सिंहासन को छोड़ देते हैं, खुशी गायब हो जाती है। जब खुशी नशा गायब होता है, योग आपका नहीं लगेगा। दूसरी बात, ऐसे सुंदर योग की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार सदा बढ़ता रहे। क्योंकि जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती है, स्वतः ही जुटी रहती है। जितना प्यार उतना तार बुद्धि का जुटा रहता है। गृहस्थ में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, प्यार सबके साथ हमें बांटना है, प्यार से सबके साथ रहना है। लेकिन जिगरी प्यार, असली प्यार, दिल का प्यार, सच्चा प्यार केवल एक बाप के साथ हो, किसी व्यक्ति वैभव के साथ न हो। प्यार के सागर के बच्चे हैं, प्रेम स्वरूप हमारा व्यवहार जरूर होना चाहिए। रूखा सूखापन हमारे व्यवहार में ना हो। तो प्यार हमें केवल भगवान के साथ ही करना है संगम युग में। प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो आत्मा और परमात्मा में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके एकदम आमने सामने मुलाकात करने का अनुभव कराती है। दुनिया में प्यार हमारा किससे होता है? हाँ जी, किससे होता है? दुनिया में एक दो का प्यार होता है, लौकिक दुनिया में एक दो के व्यक्ति के आपस में किसके आधार पर होता है? पहले बात जो बहुत सुंदर होता है उससे लोग प्यार करना चाहते हैं। बाबा से बढ़कर कोई भी सुंदर नहीं है दुनिया में। बाबा सुंदरता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार हैं, सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं, सबको वो मिटाता है, ऐसा वो सुंदर से सुंदर है, सबसे सुंदर है। इसलिए बाबा से हमारा स्वाभाविक प्यार होना जरूरी है। दूसरी बात, प्यार किससे होता है? जो हमारा सदा कल्याणकारी होता है, मदद करता है, बेहद का कल्याणकारी है, बाबा कल्याण के सागर हैं। मनुष्य आत्माएं हद के कल्याण चाहते हैं, थोड़े समय के बाद थक भी जाते हैं। मेरा इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला केवल एक बाबा ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो कल्याण के वो सागर हैं। तीसरी बात, प्यार किससे होता है? जो सत्यवादी होता है, झूठे व्यक्ति से कोई भी प्यार नहीं करता है। परमात्मा सत्यता के सागर हैं, आत्माओं में द्वापर युग से जो माया का प्रभाव होने के कारण थोड़ा झूठापन भी कभी कभी झलकने लगता है। तो सत्यता के सागर परमात्मा है, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। चौथी बात, प्यार किससे होता है? जिसके पास बहुत खजाने होते हैं, बहुत माल होता है। बाबा खजानों का सागर है, सारे संसार की आत्माओं को खजाने बांटने के बाद भी उनके खजाने नहीं खुटते हैं, वो खजानों का सागर है। और पांचवी बात, प्यार किससे होता है? जो प्यार करने के बाद अंत तक निभाना जानता है, बीच भंवर में नहीं छोड़ता है, बीच में कभी धोखा नहीं देता है। आत्माएं ने हमें बहुत धोखे दिए हैं और बहुत धोखे मिलते हैं, एक ही परमात्मा है जो अंत तक साथ निभाते हैं, घर तक हमें वापस ले जाते हैं। तो इसलिए हमें एकांत में बैठकर चेक करना है कि मेरे दिल का सच्चा प्यार केवल एक बाप के साथ हो। बाबा प्यार के सौदागर हैं, मुझे उसके साथ ही मेरे प्यार का सौदा करना है, किसी व्यक्ति वैभव के साथ शेयर नहीं करना है प्यार को। चेक करना है एकांत में बैठकर, अगर बार बार कहीं बुद्धि हमारी जाती है किसी व्यक्ति के तरफ वस्तु के तरफ, वहां से उसको हटा देना है, क्योंकि हमारे कई जन्मों के कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव भी और निगेटिव भी हिसाब किताब है, कई जन्मों के। न चाहते हुए किसी के तरफ थोड़ा सा लगाव झुकाव होने की संभावना होती है, लेकिन वहां से हमें बुद्धि को हटा देना है और बाबा से जुटा देना है। जब मम्मा बाबा के पास आई, पहले ही दिन बाबा ने साक्षात्कार कराया कि ये लक्ष्मी बनने वाली है और आप नारायण बनने वालों, पहले ही दिन साक्षात्कार कराया बाबा ने। लक्ष्मी बनने वाली है सतयुग में, अभी मेरे सारे रिश्ते शिव बाबा के साथ और मम्मा के भी सारे संबंध बाबा के साथ, बाबा से प्यार किया और नंबर वन लिया। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए तीसरी बात है, बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते जाना, बहुत गहराई की, अर्थात केवल मैं एक स्टार हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं बहन या भाई नहीं हूं। मैं स्टार के रूप में परम धाम से इस धरा पर अनेक बार आया और इस धरा से पहाड़ बजा के परम धाम में अनेक बार गया हूं। मैं कौन हूं? सितारा, चमकता हुआ स्टार, चमकता हुआ सितारा, भाई बहन नहीं हूं। इस शरीर रूपी वस्त्र को एकदम भुला दे, एकदम गला दे, भुला दे, क्योंकि 63 जन्मों का झूठा भान आत्मा में भरा हुआ है, देह का भान, उसको हमें हटाना है। और 21 जन्म तक नेचुरल आत्मा का भान रहे उसको हमें जुटाना है। कितना अभ्यास करना होगा आत्म अभिमानी स्थिति का। और मधुबन ही ऐसा स्थान है पूरे विश्व के ग्लोब में, सबसे पावरफुल स्थान मधुबन है, जैसे आप अनुभव करना चाहें इस धरनी पर आने के बाद कर सकते हैं, इसको वरदानी भूमि कहते हैं, तपस्या भूमि, कर्म भूमि, चरित्र भूमि कहते हैं। तो ये जो गोल्डन चांस आपको मिला हुआ है इसका पूरा बेनिफिट लेना है, पार्टी में आते हैं, एक दो घंटा यहाँ रहने का आने का चांस मिलता है। अभी पांच दिन, चार पांच दिन रहने का गोल्डन चांस मिला हुआ है आपको। चाहे जितनी उड़ान आप आध्यात्म आकाश में उड़ सकते हैं, तो देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलें। इस देह रूपी कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी तपस्या में लीन हूं। सुख शांति प्रेम पवित्रता के गुणों का बहुत सुंदर अनुभव करना है और आत्मा के आभा मंडल को हमें विशाल अनुभव करना है। क्योंकि जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा हम अनुभव करते हैं। देह रूपी वस्त्र को जितना भूलते हैं उतने ही बाबा से दिव्य अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, बाबा की कंपनी हमें मिलती है। तो इस तपस्या में खुद को तपाते रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूं। हम बाबा के बच्चों ने ही ऐसा बहुत सुंदर अभ्यास हर कल्प किया है, उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। कौन सी है बोलो? बहुत सुंदर यादगार हम बच्चों की ही है और किसी की नहीं है, बोलो ना। हाँ जी, दिलवाड़ा बहुत सुंदर यादगार है। पांडव जो है वो पहाड़ों पर चढ़ते गए, जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते गए पांडवों के साथ कुत्ता ही दिखाते और कुछ भी नहीं दिखाते। कुत्ता हमेशा पूंछ हिलाता रहता है, वो कुत्ता गायब हो गया। और जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते गए वो गलते गए, और जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते गए गायब हो गए, पता नहीं कहां गए। तो पांडव अर्थात परमात्मा की प्रीत बुद्धि वाली आत्माएं जो हम बाबा के बच्चे हैं, पहाड़ों पर चढ़ना अर्थात ऊंची स्थिति पर चढ़ना, जैसे जैसे ऊंची स्थिति पर चढ़ते हैं तो आत्मा की जो पूंछ है, ये देह कुत्ता क्यों दिखाते हैं, ये आत्मा की पूंछ हिलाते हैं, उसका याद हमें सदा रहता है, वो गायब हो जाती है। और चढ़ते गए तो गलते गए, माना आत्मा में 63 जन्मों का जो देह का भान है वो भी गल गया, खत्म हो गया। और चढ़ते गए तो गायब हो गए, माना संपूर्ण बनकर परम धाम में अपने अपने स्थान पर सेट हो गए। ये हमारा यादगार है। चालिया तो हो जाओ जरा। अभ्यास हमने किया है और शास्त्रों वालों को लिखने के लिए माल मसाला मिला है। तो गहराई की स्थिति और शक्तिशाली आत्माभिमानी की स्थिति। शक्तिशाली अर्थात मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली भान में ही हमें बैठना है। तो बाबा जो शक्तियों के सागर हैं, उस शक्तियों के सागर से, पावर हाउस से अथाह शक्तियां आत्मा में स्वतः ही ग्रहण करने लगते हैं। स्वयं को साधारण आत्मा समझेंगे तो साधारण शक्तियों का करंट मिलेगा, थोड़ी सी शक्तियां मिलेगी। तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। चौथी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को अनुभव करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात बाबा को अच्छी तरह से समझना है और उनके समीप परम धाम में बैठकर उनकी कंपनी को अनुभव करना है। बाबा ने मुरली में कहा था कि बाबा को बाबा के ऑक्यूपेशन के साथ और एट्रीब्यूट्स के साथ अर्थात गुणों के साथ याद करो। ऑक्यूपेशन माना कौन सी वो हस्ती है, क्या करती है, क्या उनका काम है। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती परमात्म शक्ति है, तीनों लोगों में उनका ही राज है, उनकी ही सत्ता है, उनके इशारे के बिना इन तीनों लोगों में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कहते हैं हम सभी कठपुतलियां इस रंग मंच पर हैं, हम सभी कठपुतलियों की बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ हैं, जैसे वो हमें नचाता है वैसे हम नाचते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी वो सत्ता होगी। कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं मैंने किया मैंने किया, मैंने क्या किया, कुछ नहीं कर सकते हम उसके इशारे के बिना। और सारे संसार की आत्माओं को शक्ति प्रदान करने वाले कितने शक्तिशाली होंगे। हमने बाबा कह के उसको ऑर्डिनरी बना दिया, वो तो बाबा है। अरे बाबा तो है लेकिन कौन से वो हस्ती है जिसके मुट्ठी में सारा संसार है। असली स्वरूप अगर बाबा दिखाएगा ना, हम बाबा के सामने खड़े नहीं रह सकते। ये तो प्यार के स्वरूप के द्वारा बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। बाबा को अनेक स्थानों पर जाने की क्षमता है और अनगिनत कार्य करने की क्षमता है। एक ही समय अनेक स्थानों पर जाने की क्षमता और अनगिनत कार्य करने की क्षमता है। कितनी वो शक्तिशाली हस्ती होगी। तो कहने का भाव है परम धाम में शक्तियों के सागर। अर्जुन ने जो कहा हजारों सूर्य से तेजोमय है, तेजोमय नहीं लेकिन हजारों सूर्य से शक्तिशाली जरूर है, क्योंकि इस सूर्य को पैदा करने वाला वही है। ऐसे एक तो क्या हजारों सूर्य पैदा करने की क्षमता उनके पास है। तो परम धामे बाबा के पास बैठे और बहुत गहराई से अर्थात बहुत समीपता से बैठकर बाबा के व्यक्तित्व का अनुभव करें कि आखिर भी बाबा कैसे हैं। बाबा का मन कितना सुंदर है, कितने सतोपदान संकल्प क्रिएट करता है, बाबा की बुद्धि कितनी सतोपदान है, बाबा के संस्कार कितने गजब के हैं, कितनी रॉयल पर्सनालिटी बाबा की है। समीपता से बाबा को देखें और अनुभव करें और शक्तिशाली अर्थात बाबा शक्तियों के सागर हैं, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली हैं। ऐसा प्रखर बाबा का स्वरूप हमें अनुभव करना है, देखना है। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए। बाबा बिंदु ही हैं, जैसी आत्मा बिंदु है बाबा भी बिंदु ही हैं, लेकिन उस बिंदु में सात सिंधु, आत्मा में जो सात गुण हैं उन सात गुणों के वो सागर हैं, सिंधु हैं। कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी। तो इस तरह से बाबा के व्यक्तित्व को, बाबा के स्वरूप को हम अनुभव करें, ठीक है। और पांचवी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ज्वाला स्वरूप योग का सीक्रेट है, वो है योगाभ्यास हमें पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ करना है, संपूर्ण एकाग्रता के साथ करना है। यह है इसका सीक्रेट। दृढ़ता अर्थात जब हम बैठते हैं अमृत वेले या नुमा शाम के समय योगाभ्यास के लिए, ऐसा दृढ़ संकल्प करें आज मुझे किसी भी हालत में ऐसा ज्वालामुखी योग का अनुभव करना ही है, हो क्या रहेगा। क्योंकि कहावत प्रसिद्ध है, दृढ़ता की परिचाई है सफलता। क्यों यह कहावत प्रसिद्ध है? जितनी दृढ़ता उतनी सफलता। क्योंकि जिस कार्य के लिए जितनी हमारे मन में दृढ़ता होती है, समय और संकल्प का खजाना उसके पीछे लुटा देते हैं, लगा देते हैं, और उसके कारण हमें मन इच्छित सफलता, मन इच्छित अनुभूति स्वतः ही होती है। समय संकल्प का खजाना बाबा ने हरेक पुरुषार्थी को दिया है। और एकाग्रता अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र उस ज्ञान सूर्य बाबा पर परम धाम में 100% एकाग्रता के साथ टिका हुआ हो, 1% भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, 100% एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन हो। उदाहरण स्पष्ट है, कागज का टुकड़ा हम गर्मी के दिन है, सूर्य की गर्मी बहुत तेज है, फिर भी उसको हम जला नहीं सकते हैं डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में, इतना प्रखर रोशनी है, इतनी प्रखर ऊर्जा है, फिर भी वो कागज को नहीं जला सकता है। लेकिन मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से जब कागज के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ते हैं, सूर्य की रोशनी किरणें उससे जाती हैं, जब पास होती है तो बहुत लेजर किरणें की तरह वो शक्तिशाली बनती हैं, और ऐसी शक्तिशाली किरणें पूरी एकाग्रता के साथ बिंदु पर, कागज पर जब पड़ती है तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थूल अग्नि प्रज्वलित होती है और कागज का टुकड़ा सेकंड में जल जाता है। लेंस को थोड़ा भी हिला देते हैं तो भी कागज का टुकड़ा नहीं जलेगा, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र को जब हम ज्ञान सूर्य भाव को देखते हैं तो शक्तियों की किरणें बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा की ओर आने लगती हैं लेंस के द्वारा, और शक्तिशाली वो किरणें होती हैं, और वो लेजर किरणें आत्मा पर पूरी एकाग्रता के साथ पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और योग की ज्वाला धड़कने लगती है, और उस प्रखर योग की ज्वाला में हमारे अनेक जन्मों के कठोर संस्कार भस्म हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, नामो निशान मिट जाता है। इस हॉल में हम मधुबन निवासी 87 में बाबा से मिल रहे थे। तो मधुबन निवासियों ने एक बाबा को प्रश्न पूछा था कि बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे पता चलेगा, शक्तिशाली योग की क्या निशानी है। बाबा ने शक्तिशाली योगाभ्यास की दो निशानियां बताई थी। शक्तिशाली योगाभ्यास में एक तरफ योग अग्नि के रूप में इस अनुभव होता है और उस योग की अग्नि में विक्रम भस्म हो रहे हैं ऐसा एहसास ऐसा अनुभव एक तरफ होता है। एक योग अग्नि है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि विकर्मों का बोझा खत्म होता जाता है, कम होता जाता है, तो हल्का अनुभव होता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि हम अपने मंजिल की ओर, संपूर्णता की मंजिल की ओर तेजी से भागते हैं, इसलिए हमें खुशी की अनुभूति होती है। यहां से वापस जाएंगे हैदराबाद की तरफ, जैसे जैसे घर की तरफ जाते खुशी होती है ना भाई। हाँ, अभी सेंटर है ना सत्यनारायण भाई, होती है ना खुशी। तो इससे हम संपूर्णता के मंजिल की ओर समीप जा रहे हैं तो हमें खुशी होती है। ठीक है ना। तो ऐसा ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बैठक के योग में हमें अमृत वेले या नुमा शाम के समय जरूर करना है। अभी समय समाप्ति की ओर तेजी से भाग रहा है। 31 दिसंबर को बाबा के मुख से समाप्ति शब्द निकला, कुछ मायना रखता है। समय समाप्ति की ओर तेजी से भाग रहा है तो मुझे भी समाप्ति की ओर अर्थात अपने संपूर्णता की ओर, जो भी अंश वंश है उसको समाप्त करना है और संपूर्णता के मंजिल की ओर तेजी से भागना है, पहुंचना है, ये हमारा दृढ़ लक्ष्य हो। हम बाबा के बच्चों ने ही ऐसा योग का अभ्यास हर कल्प किया है, उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। हैं? बहुत सुंदर यादगार हैं। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, धनुष बाण को किसी लक्ष्य पर भेदने की या केंद्रित करने की मारने की शिक्षा विद्या सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए एक वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और लक्ष्य दिया, इस पंछी की आंख में जो काली पुतली है, जो आई बॉल है, उस पर आपको तीर मारना है, वो आपका लक्ष्य है। उसने सहपाठियों को बुलाया, क्या दिखाई देता है। सहपाठी कहते, हाँ वो पुतली भी दिखाई दे रही है, आंख भी दिखाई दे रहा है, पंछी भी दिखाई दे रहा है, डाल भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, अर्जुन को बुलाया, क्या दिखाई दे रहा है। मुझसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल वो आईबॉल, जो काली पंछी की आंख में जो काली पुतली है वही मुझे दिखाई दे रही है। अर्जुन ने तीर मारा और पास विथ आनर हुआ। ये हमारी यादगार है। कोई अर्जुन वर्जुन होकर नहीं गया, सारे अर्जुन यहां बैठे हैं। थालियां तो बजाओ। हमारी यादगार है ये। तो ऐसे सुंदर अनुभव करना चाहते भाई, करना चाहते हैं, बोलते ही नहीं, बहुत ठंडा आवाज आ रहा है। करना चाहते हैं, क्योंकि अनुभव के बिना ये ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। बाबा इतना उच्च कोटि का हमें ज्ञान देते हैं, केवल अनुभव करने के लिए कर देते हैं, उससे ही हम संपूर्ण बनते हैं। तो सभी खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा 5 मिनट अपने को एक्टिव करेंगे। अभी एकदम पावरफुल योग की अनुभूति हम करें, एकदम पावरफुल। सीधा सभी बैठेंगे, कॉपी पेन डायरी सब हटा दो और पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सीधी एकदम सूक्ष्म वतन में फरिश्तों के दुनिया में हम बैठे हैं। चंद घड़ियों के लिए बहुत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हम करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में इस देह रूपी चैतन्य दीपक में देह रूपी चैतन्य दीपक में आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जाग माग रही हूँ। मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चौर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्म ज्योति हूं कि स्वयं के सत्य स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर जा रही हूं रही हो। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हो, जा रही हो। फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर फरिश्तों की दुनिया है यह। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर चमकीली दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके बुरकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा नसीहत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर आ रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। परम सुख की परम आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणेश्वर मेरे प्राणों से भी प्यारी दिव्यम शिवम सुंदरम। शिवपिता मज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में, मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अति शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मौज आत्म ज्योति पर हो रही है। बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मौज आत्म ज्योति पर हो रही है। होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अद्भुत शक्तियां, असीम शक्तियों को ग्रहण कर रही हूं। ग्रहण करती ही जा रही हूं और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। आध्यात्मिक शक्तियों की लेवल मुझ आत्मा में बढ़ रही है। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति खोई रहा हूं, समाई रहा हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुश नुमे पल है या हीरे तुल्य पल है या जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट परम ज्योति महाज्योति ज्योति सागर शिव पिता के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। बाहर में वहा मेरा भाग्य, वहा मेरे बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस माया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। पुनः इस देह रूपी चैतन्य दीपक पर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूं। मुझे आत्म ज्योति से शक्तियों की सदैव तरंगें इस वायुमंडल में फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे सुपिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। निराकार ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति।
हम योग की गहन अनुभूति कर रहे हैं और योग अभ्यास को ज्वाला रूप बनाने की सुंदर युक्तियां हमने सीखी है। तो हम सभी आदरणीय भ्राता जी को बहुत बहुत दिल से स्नेह भरा धन्यवाद कहेंगे, हार्दिक शुक्रिया करते हैं। वाह बाबा वाह, और वाह महारथी बच्चे भी वाह।